नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्दी कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वाद सांग वही जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं 3:30 बज चुके हैं, अपने स्वाध्याय क्लास का समय हो गया है। प्रवचन निर्देश का पुस्तक आप सबके हाथों में है और पेज नंबर 124 से चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम के अध्याय का मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। द्वादशांग श्रुतम भाव श्रुतम चाप्युपलब्धये चतुरन योगाब्धौ में निशमंतो वगायता। अर्थात द्वादशांग श्रुत और भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए चारों अनुयोग रूपी समुद्र में मेरा मन नित्य ही अवगाहना करे ऐसी भावना को लेकर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने 8-9 अध्यायों में इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के माध्यम से 68 ग्रंथों का सार भर दिया है। एक श्लोक मुझे याद आता है, जैसे आदिनाथ भगवान के संबंध में वैदिक शास्त्रों में कहा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत् फलं भवेत्। क्या कहते हैं कि 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है वह एक प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दर्शन से उतना फल होता है। समझ गए क्या आप सब? अयोध्या में आए हुए यात्रीगण, ये समझो कि हमने आज 68 तीर्थों की यात्रा कर ली। ये वेद पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से 68 ग्रंथों के स्वाध्याय का जो सार है वह एक प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के स्वाध्याय से हमें सार प्राप्त हो जाता है, स्वाध्याय का फल प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन आदि प्रकरणों को पढ़ने के बाद इस अनुयोग में आप पेज नंबर 131 पर आ जाइए, 131। अर्थात चार अनुयोगों में प्रथमानुयोग है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। ये जिनवाणी इन चार अनुयोगों में निबद्ध है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चारों ही अनुयोगों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सच्चा ज्ञान कहा जाता है और वह केवल ज्ञान तक को उत्पन्न कराने में कारण बनता है। तो अनेक चीजों को आपने उदाहरणों को सुना कि जिन ग्रंथों के अंदर महापुरुषों के चारित्र होते हैं भी प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। आप कहते हैं कि तीर्थंकर होने वाले महापुरुष भी कितने बहुत तक पुरुषार्थ करते हैं, यानी सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष प्राप्ति सुलभ नहीं है। तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने भी कई बहुत तक दीक्षा ले लेकर घोर तपश्चरण किया है, जब कहीं जाकर उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई है। ये बात प्रथमान योग से ही तो जानी जाती है। तो देखिएगा कि भगवान ऋषभ देव के जीव ने महाबल विद्याधर राजा की पर्याय से स्वयं बुद्ध मंत्री के संबोधन द्वारा 8 दिन तक आष्टांगिक पूजा करके 22 दिन की संलेखना ग्रहण कर ली और वो ललितांग नाम के देव हो गए थे। वहां से चलकर वज्रजंग राजा हुए और अपनी श्रीमती रानी के साथ एक बार चारण मुनियों को, चारण रिद्धिधारी युगल मुनिराज को आहार देने का जो पुण्य संचित किया उसके फल स्वरूप भोग भूमि में वे पति पत्नी दोनों और आर्या हो गए, और वहां जाने तक उनको सम्यक दर्शन नहीं था। वहां पर भोग भूमि के अंदर मुनियों के उपदेश से सम्यक्त को प्राप्त किया, पुनः मरण करके श्रीधर नाम के देवता हो गए। वहां से आकर सुविधि नाम के राजा हो गए, और जो उनकी पत्नी श्रीमती थी वह आकर उनके पुत्र के रूप में, केशव नाम के पुत्र के रूप में जन्म ले लेते हैं। उनके मोह में पड़कर वैराग्य होते हुए भी दीक्षा जनेश्वरी मुनि दीक्षा नहीं धारण कर पाए, और श्रावक के उत्कृष्ट व्रत अर्थात क्षुल्लक व्रतों को धारण किया। आज लोग समझ लेते हैं क्षुल्लक क्षुल्लिका के व्रत कोई महत्व तो नहीं रखते, बहुत बड़े महत्व तो रखते हैं। देखो भगवान ऋषभदेव ने भी अपने पूर्व भाव में क्षुल्लक व्रतों को धारण किया, 11 प्रतिमाओं का पालन किया, और उसके बाद संलग्न से मरण करके अच्युतेंद्र हुए, यानी 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए, पुनः वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए, 6 खंड का राज्य होकर वहां से भी उनको त्याग करके दीक्षा लेकर, और अपने पिता वज्रसेन के समोसरण में दीक्षा लेकर संपूर्ण द्वादशांग सूत्र का अध्ययन करके 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और जिन कल्पी मुनि होकर के विचरण करने लगे, एक समय ध्यान में आरूढ़ थे, उस समय उपशम श्रेणी पर चढ़ गए, और 11वें गुण स्थान में पहुंचकर यथाख्यात चारित्र के धारक पूर्ण वीतरागी हो गए, पुनः वहां से उतरे। उपशम श्रेणी आपको बताई गई ना कि वहां या तो मरण करते हैं या वहां से उतरते हैं, उतरने में 6ठे 7वें गुण स्थान में भी आ जाए, 5वें में, 4थे में और 1ले गुण स्थान में भी आ सकते हैं, तो वे उतर करके वापस 7वें और 6ठे गुण स्थान में आ गए। पुनः दूसरी बार उन्होंने उपशम श्रेणी में आरोहण किया, और दूसरी बार उपशम श्रेणी में आरोहण करके शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए, उस समय उनकी आयु पूर्ण हो गई। तो 11वें गुण स्थान में जब दोबारा उपशम श्रेणी मांडी तो 11वें गुण स्थान में उनकी आयु पूर्ण हो गई, और मरण करके वे जाकर सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र देव हो जाते हैं, और वहां से आकर भगवान ऋषभदेव बनकर अयोध्या में जन्म लेते हैं। ये 10 भाव जो महापुराण के अंदर बताए गए, इनके माध्यम से ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि इस प्रकार से भगवान के 10 भावों को पढ़ने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि जब तीर्थंकर आदि महापुरुषों को पूर्व जन्मों से मोक्ष जाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, तो आप समझो कि हम लोगों को भी कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही सहज में थोड़े मोक्ष मिल जाएगा, भाव भाव में तपस्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। देखो पूर्व भाव में 2 बार उपशम श्रेणी में आरोहण करने की स्थिति को प्राप्त कर लेना, वहां से चय करके और सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र होना, ये सब बातें, ये सब कर्मों की विचित्रता और किस प्रकार से संसार से छूटने की अवस्था, ध्यान में लीन होने की अवस्था किससे प्राप्त होती है? पुराणों से, प्रथमानुयोग से। और फिर तीर्थंकर के भाव में भी उन्होंने 1000 साल तपस्या की, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ। पुनः छपक श्रेणी पर आरोहण करके उत्कृष्ट आत्म ध्यान में पहुंच करके करके और वे भगवान ऋषभदेव बन गए, जब सिद्धशिला पर पहुंच गए, तो महाबल राजा की पर्याय से उनके भवों को जाना, और वहां जो उनके मंत्री थे उनमें से 3 मंत्री जो मिथ्या दृष्टि थे, उन्होंने महाबल राजा को बहुत भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन एक मंत्री सम्यक दृष्टि था, उसने महाबल राजा को बचा लिया। तो मिथ्यात्व के पाप से 2 मंत्री तो निगोद में चले गए, एक मंत्री मिथ्यात्व के कारण नरक में चला गया। तो नरक में जाने वाले मंत्री के जीव को तो श्रीधर देव की पर्याय में महाबल राजा ने, ऋषभ देव भगवान ने पूर्व जन्म में उसे तो जाकर नरक में संबोधित कर दिया, लेकिन निगोद में जाने वाले जीवों को वहां कोई कान वान है ही नहीं। एक इंद्रिय है और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो वहां तो कोई उन्हें संबोधन प्रदान कर ही नहीं सकता। इन सब उदाहरणों को पढ़कर मिथ्यात्व से कितना भय उत्पन्न होता है। जो आज तमाम कुरीतियों में फंसे हैं उनको सोचना है, क्या हम सम्यक दृष्टि बने रहे? हम तीर्थंकर भगवान और सच्चे देव सात गुरु के ऊपर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को कभी ना छोड़े। अहो, यदि मैं किंचित भी जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाऊंगा तो पुनः यदि निगोद में चला गया तो क्या होगा? डरो भव्यात्माओं, डरो, पाप से डरो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लोग आज रावण के पुतले को जलाते हैं और मन में बैठे रावण को नहीं जला पाते। इसलिए पाप से डरो, क्योंकि पाप हमें नरक निगोद में ले जाने वाला है। मुझे कौन वहां उपदेश देगा? इसलिए शास्त्र के वाक्यों पर अश्रद्धा करके अपने सम्यक्त को नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं कि एक चिन्ह प्रतिमा के थोड़े से अपमान से रानी कनकोदरी ने अंजना की पर्याय में 22 वर्ष तक किस तरह से पति वियोग का दुख सहा। जब ये पढ़ते हैं तो मन में आता है अपने से जरा भी अपमान न होने पाए। लोग एक दूसरे की ईर्ष्या में भगवान का, गुरु का, शास्त्र का अपमान करने में भी नहीं डरते। तो ऐसे ऐसे उदाहरणों को जब पढ़ेंगे तो होगा मन के अंदर चिंतन आएगा कि हे भव्य प्राणी, इनमें क्या रखा है? अगर हमें नरक निगोद में जाना पड़ा तो घोर दुखों को सहन करना पड़ेगा। एक सीता ने वेदवती रानी की कन्या की पर्याय में एक मुनि को भाई बहन के रूप में उन्हें झूठा दोस्त लगा दिया। इतना कर्म बंद हो गया उसको कि सीता की पर्याय में निर्दोष होते हुए भी उसका निष्कासन हुआ। एकदम निर्दोष होते हुए रामचंद्र ने उसका त्याग कर दिया। ये उसके कर्म का ही तो दोष था। अयोध्या वासी तो उसके लिए निमित्त बन गए थे। सीता यही कहती है कि मेरे कर्मों का दोष था और उसे लोकापवाद को प्राप्त होना पड़ा, निष्कासन का दुख सहना पड़ा। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं और अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। रोहिणी व्रत को किसी ने किया तो उसे रोना ही नहीं मालूम था, दुख शोक नहीं मालूम था। सुगंध दशमी का व्रत किया तो एक दुर्गंधा ने अपने शरीर को बिल्कुल सुगंधित कर लिया। सिद्ध चक्र विधान किया तो मैना सुंदरी ने अपने पति सहित 700 कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। तो इस प्रकार से तमाम उदाहरण मिलते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी बताना है कि कोई जीव मर रहा हो, किसी को कोई कष्ट हो तो हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ना, समझे बेटे? एक राजा ने एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो मर करके यक्षेंद्र हो गया कुत्ता। और उसने आकर के राजा को हमेशा कभी कोई कष्ट होता तो आकर के उनकी सहायता करता। ये है कि बच्चों को हमेशा नमोकार मंत्र को पढ़ने का संदेश देना। एक राजा ने नमोकार मंत्र का अपमान किया, केवल पानी में लिखकर और उस पर पैर रख दिया। और उसे एक देवता ने एकदम शक्ति प्रकट करके और उस राजा को मार दिया और वो मर करके नरक में चला गया। तो एक सियार ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया मुनि के उपदेश से तो मर करके तिरियन चोनी छोड़ करके प्रीतिंकर कुमार नाम का देव हो गया, प्रीतिंकर कुमार सेठ हो गया और उसी भाव से उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रथमा नियोग चैप्टर को समापन करते हुए ज्ञानमती माता जी इसके माध्यम से कहती हैं कि अरे भव्यात्माओं, इस प्रकार से पुण्य और पाप के फल को नाना उदाहरणों के माध्यम से जान करके सहज में ही पापों से डर लगना चाहिए और पुण्य कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए कि हमें पुण्य में आगे रहना है और पाप कार्यों में पीछे रहना है। कभी किसी को गाली नहीं देना, किसी का उपकार कर सको तो करना, नहीं कर सके तो कम से कम उसका अहित करने की नहीं सोचना। तो धर्म में श्रद्धा, अनुराग और गाढ़ भक्ति इस प्रकार से अपने मन में जागृत होती है। अतः श्रावकों को ही नहीं, मुनि आरिकाओं को भी प्रतिदिन प्रथमा नियोग का स्वाध्याय करना चाहिए। अब मैं आपको कल से करना नियोग में ले चलूंगी। इन प्रथमा नियोगों को, अरे ये पूर्व के इतिहास हैं। आज का प्रथमा नियोग क्या है? आज के प्रथमा नियोग हमारे आचार्य शांति सागर महाराज, गणिक ज्ञानमती माता जी, ये आज के प्रथमा नियोग हैं। हम इनके जीवन को पढ़ें कि किस प्रकार से आचार्य श्री ने कष्टों को सहन करके मुनि परंपरा जीवंत कर दी, किस प्रकार से एक मैना बालिका ने कष्टों को सहन करके और सबकी बातों को छोड़ करके और केवल स्वाध्याय के बल से इन्होंने प्रथम बाल योगिनी बनने का अवसर प्राप्त कर लिया, सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आज 90 साल की उम्र के अंदर 72 साल की इनकी तपस्या हो गई और जो भी चीज वचन से कुछ भी कहती है वही पूरा हो जाता है। आप सब लोग आज अयोध्या में क्यों बैठे हो? इसलिए कि ज्ञानमती माता जी अयोध्या में हैं। आज संसार की दृष्टि अयोध्या की ओर है। भाई अयोध्या में क्या ऐसा है? अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का जीर्णोद्धार और विकास हो रहा है। और इसके माध्यम से हम जाने ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, इन्होंने ध्यान किया। आपको मैं एक इनके ध्यान की बात बताती हूँ कि इन्होंने इतनी गहराई से, सूक्ष्मता से भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान किया कि हमेशा ध्यान की उपलब्धियां होती गई। सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, ध्यान के बल पर तीर्थों की उद्धार कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो। अवध प्रांत की एक कन्या ने साध्वी पद धारा, गणिनी माता ज्ञानमती बन निज को श्रृंगारा, उन्हीं की ज्ञान कथा सुन लो। ध्यान में उनने कब क्या पाया सत्य कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो। क्या क्या ध्यान किया इन्होंने और क्या क्या उपलब्धियां पाई आप जानेंगे। प्रभु पारस का ध्यान किया तो रत्न त्रय पाया। इनकी जन्मभूमि टिकैत नगर अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर है। एक चमत्कारिक पारसनाथ भगवान वहां विराजमान है। उनके पास ध्यान करते करते इन्होंने अंतरंग में मांगा, हे प्रभु पारस, मैं अब इस नगरी में रत्नत्रय को धारण करके आऊं। प्रभु पारस का ध्यान किया तो रत्नत्रय पाया, उसमें मन एकाग्र किया तो गुरु दर्शन पाया, अमर वाणी गुरु की सुन लो, जिसको सुन जीवन निखरा शांति कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन उसके
लो।
बाद क्या किया इन्होंने? पारसनाथ भगवान का ध्यान किया तो इन्हें गुरु मिले, आचार्य शांति सागर महाराज मिल गए। उसके बाद ये पहुंचती हैं बिहार करते करते कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। गोमटेश का ध्यान किया तो जम्बू द्वीप मिला, हस्तिनापुर के उपवन में हो वैसा कार किला, वहां की छवि मन में धर लो, दर्शन करके जन्म जन्म के सब पातक हर लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो।
मैंने भगवान बाहुबली का ध्यान किया तो इनको 13 द्वीप मध्यलोक की पूरी रचना बनी दिखी ध्यान में। तो जम्बू द्वीप के माध्यम से, 13 द्वीप के माध्यम से हस्तिनापुर में आज वो साकार दिख रही है। जम्बू द्वीप की प्रतिमाओं का एक दिन ध्यान किया, नगरी अयोध्या आदिनाथ का दर्शन प्राप्त किया, वहां की भ्रमण कथा सुन लो,
माँ मस्त का अभिषेक उत्सव की महिमा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो। ऋषभ देव की खड्गासन प्रतिमा का ध्यान किया, राजकीय उद्यान में पद्मासन निर्माण किया, सौम्य प्रभु छवि मन में धरि लो। ध्यान बिना निर्माण चंदना ध्यान पुना करि लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो। ध्यान बना निर्माण चंदना ध्यान पुनः करि लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन लो, सुनो एक ध्यान कथा सुन
बहुत
लो।
सारे तीर्थों पर जाते हैं, वहां देखते हैं कि जिन तीर्थों को आवश्यकता थी जिस चीज की, वह वहां पर साकार हो गए। एक जगह हम विहार कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि ज्ञानमती माता जी हैं, ये ध्यानमती माता जी हैं। फिर दूसरे व्यक्ति बोले ये तो निर्माणमती माता जी हैं। झालरा पाटन के अंदर माता जी ने एक शिलान्यास कराया, वहां के लोग कहने लगे माता जी आपका तो नाम निर्माणमती होना चाहिए, क्योंकि आप जहां जाती हैं तो तीर्थ का निर्माण हो जाता है। तो भव्यात्माओं ये है प्रथमा नियोग, और प्रथमा नियोग से अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखो कि ज्ञानमती माता ने कैसे अध्ययन किया, ज्ञानमती माता ने कैसे ध्यान किया। तो उस ओर हम जब जाएंगे तो बाहर की तमाम छोटी मोटी बातें जिनको सुनकर मन विक्षिप्त भी हो जाता है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करना, मैं प्रतिदिन कहती हूँ आप सब नियम कर लो कि किसी ना किसी प्रथमानुयोग के शास्त्र को, चाहे महापुराण, महापुराण सार आप जम्बूद्वीप से मंगाओ, 2400 तीर्थंकर भगवान के 63 शलाका पुरुषों के बारे में छोटा छोटा चरित्र है उसको पढ़ लोगे तर जाओगे। तो ऐसे प्रथमानुयोग के बारे में आप सबने ज्ञान प्राप्त किया। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि इन महापुरुषों के चरित्र से हम अपने जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन बदलाव ला करके और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। अब हम चलेंगे गुरु भक्ति की ओर और आचार्य देव के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करें।